राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाणिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
श्रीमद् भगवद् गीता का पहला अध्याय चल रहा है। उसमें ये बात आई अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षित पर्याप्त शेषम बलम भीमाभिरक्षित दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा तो द्रोणाचार्य महाराज के पास में जाकर बोला वाणिया वसनम अब्रवीत वचनम अब्रवीत तो वचनम कहने से जो से वही अब्रवीत है जो अब्रवीत है वही वचनम है तो ये क्यों ऐसा बोला मान वो साधारण नहीं बोला है विशेषता से बोला है राजनीति राजा वसनम अब्रवीत राजा कहा ना तो मेरी मेरी राजनीति से भरी हुई बात कही इस विशेष दूषण करने के लिए बताते ऐसे बता करके कहा महाराज पांडु पुत्रों की सेना में कैसे कैसे महारथी है बताए फिर कि हमारी सेना में भी अच्छे अच्छे उनको भी सुन लीजिए ऐसी बहुत सी बातें बताई और जब हमारी सेना के सूर्य को गणने लगे तो सबसे पहला भगवान आप भगवान भीष्मस्त कर्ण कृतस्त समय तो सबसे पहले आपका नाम लिया मान द्रोणाचार्य और भीष्म ये उभय पक्षपाती है और विशेषकर हृदय से पांडवों के पक्षपाती है तो दुर्योधन समझता है कि ये राजी हो जाए तो काम ठीक हो जाएगा नहीं तो ये विजय नहीं करेंगे ऐसे बोला और हमारे बहुत से देखे ऐसा कुछ कहने पर भी द्रोणाचार्य बोले थे कुछ नहीं कहा सुन लिया चुपचाप उनके चुप होने का तात्पर्य क्या है कि मेरे से भी ये चालाकी करता है देखिए पांडु पुत्रों ने आपके मारने लिए पैदा हुआ उसको रखा है सामने सेनापति रूप से तो आप अपने देव गले भी सब विचार कर रहे हैं थोड़ा सोच लें जिनका पक्ष आप करते हो आपको खास मारने वालों को मुख्य रखा है ये उनको विचार करने के लिए कहा ये सबके सब अस्त्र शस्त्र चलाने में होशियार है युद्ध कला में बड़े कुशल है बड़े चतुर है ये बातें कही अंत में कहा कि अपर्याप्त मरुम भीष्मा हमारा बल है वो बड़ा अजेय है जिससे रक्षा करने वाले भीष्म जी महाराज है और पर्याप्त ऐसे शाम बल्ब ऐसे शाम ये सामने बढ़े, ये पर्याप्त है मानो सीमित है, कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसे ऐसे कहकर अब भीष्म जी जो ऐसी बात कहकर के दूसरे सैनिकों से कहते हैं, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, ये जो मोर्चे हैं जहाँ जहाँ से लड़ाई करते हैं मोर्चे होते हैं, उन मोर्चों में जहाँ जहाँ जिनकी नियुक्ति की गई है वहाँ वहाँ बड़े सावधान रहकर से और सबके सब आप भीष्म जी की रक्षा करें। तो अस्माकं बलम, हमारा बल तो भीष्मा भी रक्षित है, भीष्म की रक्षा आप करें तो सबकी रक्षा करने वाले भीष्म, उस भीष्म की हम रक्षा क्या करें? क्या वो अपनी रक्षा में भी निर्बल है? तो यहाँ एक कारण है, भीष्म जी महाराज के सामने जब शिखंडी आ जाएगा तो वहाँ भीष्म जी शस्त्र नहीं चलाएंगे। शिखंडी पहले जन्म का भी लड़की शास्त्री था और इस जन्म में जन्मा, तब भी ये कन्या रूप से जन्मा है, ये पीछे हुआ, ये कथा आती है। काशी के राजा थे, उन्होंने अपनी लड़कियों का स्वयंवर किया, तीन कन्याएं थी, उन कन्याओं का स्वयंवर किया, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए और अपने अपने आसनों पर बैठ गए और स्वयंवर हुआ, वे तीनों लड़कियां अपनी पुष्पमाला लेकर भरने के लिए तैयार होती है, उस समय भीष्म जी महाराज आ गए। भीष्म जी ने आकर कहा कि सब राजाओं को बुलाया, मेरे को बुलाया नहीं, आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो क्या महाराज, आपने तो प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, तो स्वयं पर मैं आपको क्यों बुलाते, किसे मेरे भाई तो है, उन भाइयों का भी हमने संबंध करना है, आप लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, क्षत्रिय समूह के जहाँ संगोष्ठी होती है वहां मेरे को निमंत्रण ही नहीं देना, तुमने हमारा अपमान किया। काशी राजा कह, तुमने बड़ा अपमान किया है मेरा, इस वास्ते मैं तुम राजाओं का तो सबका अपमान करता हूँ। वे तीनों राज कन्याएं थी, उनको पकड़ करके अपने सब बैठा लिया और चला दिया रथ। वो कन्याएं बेचारी क्या करती, रथ चला दिया और वे क्षत्रिय महाराज टूट पड़े भीष्म जी के ऊपर। तो भीष्म जी ने ऐसे शस्त्र अस्त्र चलाए, सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिए, चुप हो गए, सब गए अपने अपने जगह। अगाड़ी चलते चलते एक लड़की ने ये कहा, अम्बा अम्बिका अम्बालिका लड़कियां थी, वो एक बोली के महाराज, क्षत्रिय समूह के ऊपर आप विजय करने वाले, हम तो कन्या है, हम क्या जाने इस बात को, आप ले जाते हैं तो हमारे से कोई बस नहीं चलता। परंतु एक लड़की ने कहा कि महाराज, मेरा साल्वराज के साथ मन था कि उसको मैं भरूं, आप ले जा रहे हैं, मेरी बस की बात नहीं, तो उसको खड़ा कर दिया कि तू जाओ उतर दीजिए यहां से, मैं दूसरे के हिस्से को हक को मैं लेना नहीं चाहता, जाओ तुम। उसको उतार दिया, वो को ला करके यहां दे दिया। तो चित्रांगद और विचित्र वीर दो भाई थे, उन दोनों को पढ़ना दिया। अब वो लड़के वहां से गई, अपने पिता के पास कि महाराज मेरा स्वयं राप करें। कहते बेटी मेरी कन्या थी तब तक तो मेरा अधिकार था, जबरदस्त जब भीष्म ले गया और मैं छुड़ा नहीं सका तो तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, अधिकार भीष्म को हो गया तो मैं कैसे अपने बाप लाऊं, अगर मैं विजय कर लेता तो तेरा स्वयंवर मैं करता, परंतु मैं तो हार गया, इस वजह से बेटा तेरा संबंध करने में मैं असमर्थ हूं, हक नहीं अधिकार नहीं। वो साधु के पास गई, कहते मेरा विचार था आपको भरने का, तो उसने कहा कि मैं भी चाहता था तेरे साथ विवाह करना, पर भीष्म से जब मैं हार गया तो तुम भीष्म की हो गई, अब मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, मेरा हक नहीं रहा अधिकार नहीं रहा, अगर जीत जाता तो मैं तेरे साथ जरूर विवाह करता। अब बेचारी वो क्या करे, तब इनके नाना रहते थे जंगल में तपस्या करते बूढ़े थे, वहां नाना जी के पास गई माँ के पिता के पास, तो महाराज उसे जाकर कहा नाना जी ऐसी दशा हुई, सब कथा कहकर सुना दी। भीष्म जी ने तो छोड़ दिया कि तुम साधु को चाहती हो तो चल जाओ यहाँ से, पिता ने इनकार कर दिया कि तेरे पर मेरा हक नहीं रहा, ऐसे साधु ने भी कह दिया कि तेरे पर मेरा अधिकार नहीं है, ये सब काम भीष्म ने बिगाड़ा है, तो क्या करूं मैं, आपके शरण आई हूँ, बालक कहाँ जाए, अपने दादा ने जाए, नहीं तो नाना ने जाओ, तो आप नाना जी हो मैं आपके पास आई हूँ। कुछ बेटी बैठ जा, ठहर घबरा नहीं, बैठ जा, मैं तेरे बात से विचार करूंगा। आश्वासन दिया नाना जी ने और वहां रखी, कहा कि भीष्म हर करके ले गया, ये सब भीष्म का दोष है, और मेरा है मित्र परशुराम, परशुराम का है वो चेला, और परशुराम जी हमारे पास आया करते हैं तो मैं परशुराम जी को कहूंगा जिससे भीष्म तेरे को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तेरे पर भीष्म जी का अधिकार रहा। रात्रि में भीष्म परशुराम जी आए, परशुराम जी से कहा महाराज हमारी ये बच्ची है दोहिती है, इसकी ऐसा दशा हुई, काशी राजा की ये कन्या है मेरी दोहिती है, तो काशी राजा इनका स्वयंवर करते थे, भीष्म जी ने आकर कहा कि मेरे को बुलाया नहीं, मेरा अपमान किया तिरस्कार किया तो मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ, इन लड़कियों को मैं ले जाता हूँ, आ जाओ किसी को भगवत से, जो उसे ललकार कर ले गए और युद्ध में सब हार गए भीष्म से। इस लड़की ने अपने मन की बात कह दी कि मैं तो साधु को पढ़ना चाहती थी, तो भीष्म को था ले जाओ, मैं दूसरे की चीज को नहीं लेता, ले जाओ यहां से। वो आई तो पिता ने और साधु ने सबसे इनकार कर दिया, पर मेरे पास आई, मेरी दोहिती है मेरे बेटी की बेटी है, तो आप किससे कृपा करें कि क्या कि भीष्म आपका शिष्य है और इस पर भीष्म का अधिकार है, आप किस तरह से भीष्म इसको स्वीकार कर ले तो सब काम ठीक बैठ जाए। परशुराम जी का ठीक है, परशुराम जी गए भीष्म से यहाँ बाहर जमुना के किनारे बैठ गए, समाचार भेजा कि तुम भीष्म को कह दो तुम्हारे गुरु परशुराम आए हैं, तो वो बड़ी पूजा की सामग्री लेकर के आए, वहां महाराज का चरण धोया, पूजन किया, आरती की, फूल चढ़ाए, नमस्कार किया, साष्टांग किया, महाराज क्या आज्ञा होती है आप और यहाँ कैसे ठहर गए, घर पर पधारते आप, सर अब पधारो, नहीं घर पर मैं नहीं चलता, मेरी बात मानो तो हम चले, बात की क्या बात है महाराज, कि नहीं वचन दो, प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारी जो बात हो मैं मानूंगा, स्वीकार करूंगा। भीष्म जी ने कहा महाराज आप गुरु नारायण है, सिर दे सकता हूँ, प्रतिज्ञा की क्या बात, आप जो कहो सो करूंगा, कि जो मैं कहूंगा वही करेगा। तो कहा देखो, एक तो काशीराज की कन्या को मैंने त्याग दिया है, उसको तो स्वीकार करूंगा नहीं, और आप सुनते ही हो कि मैंने प्रतिज्ञा रखी मैं त्याग करूंगा नहीं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उसके सिवाय और कोई बात हो तो बताइए, कहते उसी के लिए आया हूँ मैं, तो स्वीकार करना पड़ेगा। कहते मैं नहीं मानी ये बात, मैं स्वीकार नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगा तुम, कि महाराज आप गुरुजनों से सुना है कि मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए, प्रतिज्ञा का नाश नहीं करना, प्रतिज्ञा छोड़नी नहीं चाहिए। आप गुरुजनों से तो शिक्षा मिली है, मेरी प्रतिज्ञा है, क्या भी उस चीज को मैं नहीं लेता, एक मैं ब्याह करना ही नहीं चाहता। तो तू मेरे को जानता है कि नहीं, आप गुरु हो मैं शिष्य हूँ, ठीक से जानता हूँ, समझता है कि नहीं मेरे को, मैंने बहुत बार क्षतियों से रहित इस विषय कर दिया है, तू क्या युद्ध करेगा मेरे साथ? कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो क्या से युद्ध करता, क्षत्रियों का धर्म है, आपका हुकुम हो जाए तो कोई बात नहीं है। कि मेरे को समझता नहीं है, मैं समझता हूँ। मैं कहते बहुत बार मैंने 21 बार इतनी पृथ्वी को सत्यों से सहित कर दिया है, तो कह महाराज मेरी बात भी सुन लीजिए, नतरा जातवान भीष्म मत विधो आप क्षत्रिय पश्चात जाता तेजान से त्रेशोजया। उस समय मैं भीष्म पैदा नहीं होता क्षत्रियों में, अथवा मेरे समान कोई क्षत्रिय था नहीं। आग लगी है महाराज घास पर लगी है, घास पर, पानी में नहीं लगी है, पत्थरों पर नहीं लगी है। आपने क्षत्रिय से रेत कर दिया है तो अब करके देख लो, है आप जैसी हिम्मत हो तो युद्ध करेगा, बस आपकी आज्ञा हो कुछ क्या, गुरु आज्ञा हो जाए। क्षत्रियों का तो धर्म है युद्ध करने का, या फिर आपका हुक्म है गुरु महाराज की आज्ञा हो जाए तो कुछ हो जाओ तैयार, तो बहुत ठीक बात है। भीष्म जी गए जाकर दो रथ लाए, अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए दो रथ, वो लाग कर जमर एक रथ पर तो मैं आरूढ़ हो जाता हूँ, इनमें से एक रथ आप ले लीजिए और सामने आ जाइए, अब युद्ध करेगा। अब दोनों का युद्ध होने लगा, ऐसे अस्त्र चले अस्त्र चले, भीष्म तो इच्छा मृत्यु ठहरे और परशुराम से रे चिरजीवी, अब मरे कौन, मरे दुनिया भी चल, शस्त्र अस्त्र चले, आग लग जाती है, कभी जल बरसता है, कभी कुछ हो जाए, कैसे मार दुनिया नष्ट होने लगी। तो ऋषि महात्माओं ने कहा, प्रजा ने कहा कि अंधाता आप बंद करो, आप में तो कोई मरने वाला है नहीं, हम सब मरने वाले हैं, मुक्त तो मर जाएंगे, कोई हमारा अपराध है नहीं, हमने क्या गुनाह किया बताओ, आप आपस की लड़ाई, मरे हम मुक्त में नहीं माने। ऋषि मुनियों ने कहा, फिर गंगा आई, भीष्म जी की माँ गंगा मैया, गंगा प्रकट होकर के आई, भीष्म बेटा युद्ध मत करो, युद्ध से दुनिया का बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम तो मरने वाले हो नहीं, ना परशुराम मरने वाला, अब हार कौन स्वीकार करे। तो भीष्म जी बोले, माता जी माँ आप विचार को, मैं थोड़ी लड़ूं, हमारे घर पर आकर राड़ करे ये मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी लड़ाई की है, परशुराम मान जाए। परशुराम जी जाकर कहा, कैसे माता जी मैं कैसे स्वीकार कर लूं अपनी हार, मैं कैसे हार स्वीकार कर लूं, मैं युद्ध करूंगा। भीष्म जी कहते माँ अब मैं क्या करूं बताओ, ये युद्ध करते तो मैं हार के लिए स्वीकार कर लूं, आपका बेटा हूं मैं। देवता आए, सबने प्रार्थना करी, कहते हार हम स्वीकार नहीं करते। तो देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि आप दोनों की विजय हमारी हार, ऐसे मान, हार हमारी हुई, हम हार गए, आप दोनों की विजय करते हैं, इस विजय ऊपर फैसला कर दो। तो कहते ठीक, कोई बात नहीं, परंतु जब तक रथ दिखेगा तब तक तीर्थ नहीं दिखाएगा, ना तो परशुराम जी दिखाते हैं ना भीष्म जी, तो सामने रथ पासे पासे चले जो, जब तक दिखते रहे वसी रहता रहे, फिर लटके गए अपने दूर, ये तो चले गए। अब वो कन्या क्या करे बिचारी, उसने काशी में जा करके भगवान शंकर की प्रार्थना करी, तपस्या करने लगी, शिव शिव करते हुए शिव जी के अर्पित हो गई, वहीं मर गई। इधर द्रुपद राजा द्रुपद ने अपने पुत्र के लिए भगवान शंकर की उपासना की। शंकर भगवान ने कहा, बोलो ब्रह्म रूपी, बोलो भाई प्रदान मांगो, क्या चाहते हो? तो द्रुपद ने कहा, महाराज मैं तो संतान चाहता हूँ, मेरे संतान हो जाए, कि तुम्हारी लड़की हो जाएगी। वो कहते महाराज मैं लड़की नहीं, मैं तो लड़का चाहता हूँ। तो तुमने संतान कहा, संतान तो लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। कि नहीं महाराज मैं चाहता हूँ मेरे तो पुत्र हो। अच्छा वो लड़का ही लड़की हो जाएगा, ले आ, ले आ। वो लड़का ही लड़की है, वो लड़का हो जाएगा। द्रुपद आ गई पीछे, अब वहां रहने लगे। उसके एक लड़की पैदा हुई, कन्या, भगवान शंकर के खजाने में वही छोरी थी दीदी, अब वो पैदा हो गई। तो सबने प्रकट कर दिया कि हमारे राजकुमार हुआ है, हमारा लड़का हुआ है, सब जगह में आनंद बरसने लगा, बधाई बरसने लगी कि महाराज कुमार की राजकुमार हुआ है। ऐसे ही उसी प्रसिद्ध किया, किसी को पता नहीं लग जा रहा, रानी जानती थी, राजा ने कहते चुप रहो, भगवान शंकर का वरदान है, ये लड़का हो जाएगा, इस वास्ते कुछ समझ लो, लड़का है हमारा, बेटा है बेटा, ऐसे किया, पढ़ाया, सब कुछ किया, पढ़ा करके महाराज विलक्षण बात ये करी कि हिरण वर्मा नाम से राजा से उसकी लड़की के साथ ब्याह भी कर दिया। ब्याह हो गया सर, ब्याह होने पर वो लड़की गई ससुराल, तो मिले तो दोनों लड़कियां, अपने पीछे आकर मां से कहा कि मां मेरा ब्याह तो एक छोरी के साथ कर दिया, छोरी का ब्याह छोरी के साथ। तो राजा बिगड़ी के धोखा दिया मेरे साथ, वो बिगड़े हिरण्य वर्मा, उसने चढ़ाई कर दी। अब उन्होंने कहा युद्ध घमासान, वो लड़की उस समय में अपने पीहर में थी, उस लड़कियों की पोशाक थी, पुरुष बना हुआ था, उसने देखा कि बड़ी आफत आई, क्या करूं, पिता पर आफत आ गई, तो भेष बना बदल करके छिप करके और निकल गया, फौजी आदमी पहचान नहीं सके, बार बार भाग गया, भागा हुआ चला जा रहा था तो सामने एक स्थूणा कर नाम करके यक्ष मिला, और ये क्यों भागता है, क्या बात है? तो उसे सब कह दी, मेरी आफत आ गई, मेरे पिता पर भी आफत आ गई, मैं क्या करूं? उसने कहा कि देखो भाई, हम यक्ष हैं, हम विद्या जानते हैं, अगर तुम्हारा बचाव होता हो तो मैं तेरा स्त्री तो मैं ले लेता हूँ और पुरुषत्व तो तेरे को दे देता हूँ, मैं तेरा काम हो जाए तो मेरे लौटा देना, अभी देता हूँ थी, फिर तुम देता मेरे, उसकी अच्छी बात आप मिल जाने की बात क्या करना है, मान रही बात। वो छिप कर गया पिताजी के सामने, मैं तो पुरुष हूँ, भगवान शंकर की कृपा है, बदवे शंकर ने वरदान दिया ही है, ये पुरुष बन गया तो बन गया होगा। तो लड़ाई होते समय द्रुपद ने हिरण्य वर्मा को आदमी भेजा कि आप लड़ाई क्यों करते, हमारे पर चढ़ाई करके क्यों लोग दुनिया का नाश करते हैं? कि तुमने धोखा दिया, हमारी कन्या का कन्या के साथ विवाह कर दिया। तो महाराज आप सोचिए तो सही, आपकी कन्या का आप कहते हो नाश किया, तो मेरी कन्या तो नुकसान आपके मेरे कम हुआ गया। एक ही तो बात है, आप कन्या मेरी कन्या, तो मेरे कन्या नुकसान कम है क्या? तो ऐसी मूर्खता क्यों की? मैं मूर्खता नहीं करता, मेरा बेटा है बेटी नहीं है, वो तो पुत्र मेरा बेटा है। क्या दिखाओ? तो वो रहते हैं खोजा लोग उनसे, जाओ भाई देखो परीक्षा करो, देखा तो पुरुष निकला। तो बेचारा वो लज्जित होकर घर लौट गया, कहते वो छोरी के कहने से हमने इतने युद्ध किया और बात बात तो कुछ नहीं निकली। ये तो इधर गए, उधर यक्षों के राजा कुबेर वो आए तो सब यक्ष सामने, अरे वो सुना कहने कहाँ है? कहते महाराज वो तो सिंह बना बैठा छिपा हुआ, आया नहीं सामने, मेरे सामने नहीं आया, जा चूसरी रहेगा जन्म उसने दे दिया सब। अब ये लड़ाई मिट गई तो वो शिखंडी गया वहां, उसका नाम शिखंडी है। तो वहां जाकर के भाई तेरा पुरुषत्व तो ले ले, कहते मैं तो पुरुषत्व नहीं दे सकता, मेरे को साप हो गया है, मैं तो सी बना रहूंगा, तुम पुरुष बना रहेगा जा। तो वो शंकर के मां धरना दिया, भजन किया, उसने तपस्या की कि मैं उनको मारू भीष्म को, भीष्म का नाश करूंगा मैं शिखंडी। तो भगवान शंकर ठीक है, तो वो शिखंडी बना हुआ भीष्म के मारने के लिए पैदा हुआ और मन में कह रहे भीष्म को मारना है, भीष्म ने मेरी दुर्दशा करी है तो इसको मारना है मेरा काम है। तो ये कहते हैं कि भीष्माभिरक्षण, तू भीष्म की अभिरक्षण करो, क्योंकि भीष्म के सामने शिखंडी आ जाएगा तो पहले जन्म का स्त्री है, इस जन्म का भी स्त्री जन्मा है, तो बड़े अच्छे पुरुष होते हैं वो स्त्री पर हाथ नहीं चलाते। स्त्री पर हाथ चलाना बड़ा पाप माना गया है, कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को अथवा और किसी स्त्री के ऊपर हाथ चलाता है, प्रहार करता है, तो बड़ा शास्त्र में दोष है। तो भीष्म जी कहते भाई शिखंडी के ऊपर मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, सब स्त्री नहीं चलाऊंगा तो वो आकर मार दे। तो सबको कहते हैं भाई भीष्म मेरा भी रक्षण, तो आप भीष्म की रक्षा करे उसको नजीक ना आने शिखंडी को, फिर हमारी विजय निश्चित है। इस बात भीष्म वेवाभिरक्षण को भवन तस्त गई। इस बात संध्या हर संकुल वृद्धा पितामह कुरु वृद्ध कौरवों में बूढ़े पितामह भीष्म है, उसने ये बात सुनी। द्रोणाचार्य के पास में थे तो द्रोणाचार्य आदि को कहता सब भीष्म जी की रक्षा करो। तो भीष्म जी ने देखा दुर्योधन ने बहुत नम्रता से बातें कही, बड़ी राजनीति की, पर द्रोणाचार्य बोले नहीं। तो भीष्म जी को दया आ गई, दादाजी ठहरे, पोता है अपना। तो भीष्म जी महाराज ने उसको संजनी आने हर्षम, उसको दुर्योधन को हर्ष पैदा करते हुए पितामह ने संगनाद मिले, उससे ही संगनाद मिले थे, उधर स्वर से दहाड़ करके जोर से शंख बजाया अपना प्रताप। अब शंख बजाया जोर से भीष्म जी ने, तो भीष्म जी थे सेनापति मुख्य, उनका शंख बजा तो कौरव सेना के सब बाजे बज उठे, अलग 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 टुकड़िया होती है सेना की, उन सेना के अलग अलग टुकड़िया के अलग अलग बाजे होते हैं, सब बाजे बज उठे भीष्म जी की आवाज सुन करके। तथा शंखा से भेजे से शंख बजे, भेजे नगारा बजे, पणव पणव धाम ढोल बजे, पणव आन गो मुखा मृदंग बजे, नरसिंह बजे, सेवा धर्म का साथ के साथ सबके सब बाजे बज उठे एकदम। जब भीष्म जी की भाषा की आवाज सुने सबके सब बाजे बज उठे, शब्द तुम लोग बहुत बड़ा भयंकर शब्द हुआ संपूर्ण राज्य हुआ। ये भयंकर शब्द सुना भीष्म जी की तरफ से, कौरव सेना की तरफ से सब बाजे बजे तथा श्वेते रहे महति चंदन स्थित हो, तो एक बड़े भारी रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन माधव और पांडव से, वो माधव भगवान प्रकार नाम से खाता बहुत था, पस्ता बहुत और बड़ा लंबा जोड़ा था, बहुत बड़ा बलवान था, संसार में प्रसिद्ध बलवान। उसने भी द्रुपोदर ने भी तत्पुरुष महासंघम भीम कर्मा द्रुपोदर बड़ा भाई संघ था, वो महासंघ बजाया भीम ने भी अनंत विधि राजा चुनती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का राजा शंख था वो राजा युधिष्ठिर ने बजाया। नकुला सहदेव ये कुंती पुत्र कहने का तात्पर्य युधिष्ठिर ने शंख बजाया, भीम ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, ये कुंती पुत्र है। अब नकुला सहदेव नकुल और सहदेव है, उन दोनों के सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख है, इन दोनों ने बजाए, पांचों पांडवों के बड़े जोर से संघ बजे। काशी से परमेश्वर से बड़ा भारी धनुष वाले काशी के राजा काशी उसने संघ बजाया, और शिखरनी से महारथा ये शिखरनी भी महारथी था, इसने भी संघ बजाया। धृष्टद्युम्न है, विराट है, सात्यकी है, अपराजित सात्यकी है, द्रुपद है, और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये भी जवान हो गए थे युद्ध में तैयार से, उन्होंने संग बजाया। और सौभद्रा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु शंकांत प्रसाद अपने अपने संग बजाए, बड़ा बड़ा शब्द हुआ हुआ वो शब्द हुआ सघोषो धारता राष्ट्राणाम हृदयानी विराज, वो जो शंखों का शब्द हुआ, बाजों का शब्द हुआ पांडव सेना का, तो धृतराष्ट्र के संबंधी जितने उस सेना के थे उनके हृदय को बड़ो विदीर्ण कर दिया, वो कांप गया उनका हृदय। यद्यपि 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना है, तो 11 अक्षौणी सेना के सामने 7 अक्षौणी के बाजे बजे तो उनका हृदय तैर गया। कारण क्या है, जो पापी होते हैं, जो अन्यायी होते हैं, उनका हृदय कमजोर होता है, उनके हृदय में बल नहीं होता है, क्योंकि पक्ष कमजोर है अधर्म को लेकर के, तो हृदय में बड़ी भारी पीड़ा होगी। वो कैसा नभस से पृथ्वी से वह पृथ्वी से लेकर आकाश तक सबका सब ऐसा घोर जो जोर ने शब्द हुआ अनुनादित सभी विनादित करता हुआ तुमल हुआ शंख, बड़ा भारी तुमल सूर्य, तुमल तो उनका भी हुआ पर उनके शंखों का पांडवों पर इतना असर नहीं पड़ा जितना पांडवों के शंखों का असर धृतराष्ट्र की सेना पर पड़ा, दुर्योधन की सेना पर। ऐसे जब दोनों शंख भर गए अथब दोनों कपित ध्वज, अब कपित ध्वज अर्जुन दोनों सेनाओं की बाजे तो बजे, शस्त्र नहीं चले, अभी शस्त्र तैयारी में शस्त्र चलाएगा कोई शुरू नहीं हुआ। ऐसे मौके में धाषण कपित ध्वज देखा उन व्यवस्थित दृष्टि संबंधियों को, प्रवृत्ति शस्त्र संपादक बाद शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, बाजे तो बज ही गए हैं, अब चलने की तरह शस्त्र चलेंगे। ऐसे समय में पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, गांडी धनुष उठाया, उस पर अत्यंत चढ़ा करके और बोला, ऋषि के संपदा वाक्य में महामयी पते संजय कहता धृतराष्ट्र, ऐसे उसने धनुष चढ़ा करके ऋषिकेश भगवान को कहा, दुर्योधन तो द्रोणाचार्य के पास गया और ये ऋषिकेश भगवान से कहता है, तो ऋषिकेश राम अंतर्यामी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले भगवान कृष्ण, उस कृष्ण को इधम आई पते, ये वचन कहा। क्या क्या वचन कहा? शरण मध्य स्थापे में चुचाचित मेरा सब मेरा कहा कि दोनों सेनियों उभयो सेनियों मध्य मेरा संघ स्थाप है, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। ये बाजे बजे हैं युद्ध की तैयारी है, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। कैसे? क्यों? कि मैं देखू प्रसंस्थावे यहां देता निरीक्षे हूं। कब तक? जब तक उनको मैं ठीक तरह से न देख लू तब तक रथ वही खड़ा करिए आप। याद देता निरीक्षे हम युद्ध कामना वस्तान, ये युद्ध की कामना वाले आए है ना, बड़े उतावले हुए युद्ध करने के लड़ रहे थे हो रहे हैं। युद्ध कामान अवस्थितान इनको देखू मैं कई मया से युद्ध में बुद्धि में इस नवोद्योग में मेरे मया कई सा युद्ध भी और कई मया से युद्ध भी मेरे साथ कौन दो हाथ करने वाला है जरा भर मानसों को मैं देखू। धातु बुद्धि प्रीत की धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए उनका विजय करने के लिए इतने राजा लोग इकट्ठे हुए हैं और शंख बजाया है युद्ध के लिए आते हैं। मैं देखू तो योद्ध सिमाना अवेक्षक, तो तुम युद्ध करते हो? नहीं नहीं, योद्ध सिमाना अवेक्षक मैं देखता सब योद्ध सिमान हो रहे हैं युद्ध के लिए, अभी जल्दी युद्ध करने वाले तैयार हो रहे हैं, यहाँ सब आए हैं तो उनको देखू मैं। तो सूरवीरता से भरा हुआ जो है वो जोर से कहता है दोनों सेनाओं के बीच, तो दोनों सेनाओं मैंने फैसले से दोनों सेनाएं खड़ी थी जहां से शस्त्र बाणों का प्रयोग हो सके इतनी दूरी पर दोनों सेनाएं सजी हुई थी ऐसे। तो दोनों सेनाओं के बीच में तो बीच का तात्पर्य ये दोनों सेनाएं यहाँ और यहाँ है उनके भी बीच में, इधर से भी बीच में इधर से भी बीच में, वहाँ भगवान एव मुक्त हो ऋषिकेश हो गुड़ासी हरिद्वार। जब अर्जुन ने ऐसा कह दिया तो ऋषिकेश भगवान ने शेर योर मध्य उभे शेर यो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य भाग में स्थापित रथोत्तम रथों में उत्तम बड़ा भारी मस्ती चंद्रेश बताया वो उत्तम रथ है उसको स्थापन कर ले। परंतु खड़ा कहाँ किया? कि भीष्म द्रोणम प्रमोद, जैसे भीष्म और द्रोण ठीक तरह से दिखे सामने एकदम ऐसे सामने जाकर उसको खड़ा किया और जितने राजा लोग थे बच्चे खड़े उनके बीच में सामने खड़ किया और खड़े ही कर दिया। इतना नहीं हुआ तो पार्थ पश्चेतान संवेतान गुरु ने थी प्रथानंदन अर्जुन अब जो ये सामने खड़े है इन कुरु पक्षियों को देखो देखो कुरून पश्चिम कुरून कुरुपुर दुर्योधन आदि कहते धारराष्ट्र कहते तो बात और थी, मन कुरून पश्चिम भीष्म द्रोण के तो सामने खड़िया अब कुरुपंशियों को देते कुरुपंश दोनों ही इस वचनों में कोई जादू था। कुरून पश्चिम इनको देख मैंने पहले कहा वैसे खड़ा किया इनको देखो तो कुरून पर सीधे देखा तो ठीक याद आ गई तो इधर की सेना देखे तो भी कुरु वंशी अपनी सेना देखे तो कुरु वंशी एक ही वंश के थे दोनों और भीष्म द्रोण सामने संसार में पूजनीय दोनों होते हैं विद्या यदि भय हुई है साथ है वाणी सूत्र विद्या संबंध और जन्म संबंध। जन्म संबंध से तो भीष्म जी बड़े हैं, विद्या संबंध से द्रोणाचार्य बड़े हैं, इन दोनों ने ही भीष्म जी ने बड़ा पालन किया। ये छोटा था ना अर्जुन तो कथा आती है महाभारत में उसको गोदी में लेते भीष्म महाराज है भीष्म जी महाराज सफेद दुर्धारी है सफेद बाल है सफेद वर्दी है चांदी का रथ था वो भी सफेद जैसे सफेद कैलाश पर्वत हो पहाड़ हो चांदी का ऐसे थे वो। तो ये बचपन में खेलता था अर्जुन तबन गोखले गोदी में। अर्जुन ने कहा कि महाराज भीष्म और द्रोण क्या है मेरे, ये दादाजी गोदी में मैं खेला हूँ, उनके बढ़िया बढ़िया वर्दी को मैंने मेला कर लिया है। बच्चा था, खेलता खेलता चढ़ाता था गोदी में, कोई प्यार करता प्यार करते तो वो कहता पिताजी पिताजी, तब मैं कहता भीष्म जी कहते बेटा तेरा पिता ना, तेरे पिता का भी पिता हूँ मैं, ऐसे प्यार करते स्नेह करते खेला है। ऐसे जो भीष्म जी महाराज द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन पर बहुत स्नेह रखते थे, बड़ी कृपा रखते थे, अर्जुन को बड़ी बड़ी शस्त्र अस्त्र सिखाए, ब्रह्मास्त्र सिखाया, अपना बेटा अश्वत्थामा को भी सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार पीछा समेट लेना ये विद्या अर्जुन को सिखाई, बेटे को भी नहीं सिखाई, अश्वत्थामा को भी। इतना स्नेह था अर्जुन पर। अर्जुन बड़ा गुरु भक्त था और विद्या में बड़ा तेज था, सीखने में बड़ा तेज था। तो गुरु भक्ति और बुद्धि सीखने से जो सुनने वाला चेला होता है, आज्ञा पालन करता है और वो सीखता है, जितनी बातें सिखाए बड़ी त्याग कर देता है, तो गुरु महाराज बड़े राजी होते हैं। जैसे पिता धन कमा कर लाने से खुश होते हैं, ऐसे गुरुजन उसकी विद्या देख कर राजी होते हैं। और सेवा भी करता था, विद्या भी बड़ी विचित्र ऐसा सीखता था। अर्जुन एक जगह भोजन कर रहा था, तो भोजन करते हुए दिया ले गए, अंधेरा हो गया, तो भोजन करते ही रहा। अर्जुन देखा रहे भी ये तो दीपक के बिना ही हम तो भोजन कर लेते हैं, भोजन चूकता ही नहीं, हाथ मुख में ही जाता है, दिखता है नहीं, तो भी तो अंधेरे में बांट बचार शुरू किया, शब्द बेदल किया अंधेरे में, ये आपसे आप सीखा, इस विद्या को सीखा देखा, तो महाराज बड़े खुश हुए, द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, किसी ने बहुत बढ़िया अध्ययन की है, तो ऐसे अभ्यास करता है। और सेवा की बात आती है, एक बार द्रोणाचार्य महाराज स्नान करने को गए, स्नान गए तो एक मगर ने पकड़ दिया महाराज का पैर, वो घसीटने लगा, तो द्रोणाचार्य कह रहे भाई मेरे को छुड़ाओ, मगर ले जा रहेगा। अर्जुन महाराज बारा बाण उस मगर के मुख में जोर से ढीला पड़ गया, द्रोणाचार्य महाराज छूट गए। ऐसे सेवा में भी बेचारा तैयार था और पढ़ने में भी जो कोई पढ़ाते वो बड़ा याद करता था, कोई पूछे ठीक बता देता था। तो गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए सेवा एक तो है, एक जो पढ़ाई करे वो पढ़ाई ठीक तरह कर लेता है तो गुरुजन खुश हो जाते हैं। जैसे माँ के सामने बच्चा तैयार हो जाए बड़ा तो माँ खुश हो जाती है, ऐसे गुरुजन है वो माँ होते हैं विद्या की, तो विद्या देख करके वे खुश हो जाते हैं। तो अर्जुन के ऊपर बहुत कृपा रखते थे, कृपा ही नहीं वरदान भी दे दिया था कि अर्जुन मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, सब तू सबसे तू बढ़कर होगा शस्त्रों में, ऐसा वरदान भी दे दिया। उसका नतीजा एक हुआ ऐसा कि इतने सूरवीर तो थे ही, एक दिन ये गए जंगल में, तो शिकारी लोग होते हैं वो शिकारी कुत्तों को रखते हैं, कुत्ते होते हैं शिकारी, बड़े लंबे होते हैं वो, छोटी लंबी पूंछ पतले पतले होते हैं शिकारी, तो उनको शिकारी बनाया जाता है, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाए तो शिकार को पकड़ लेते हैं। तो वो एक शिकारी कुत्ता भूसता हुआ जा रहा था, भागता हुआ, तो वहां एक लव्य भील खड़ा था, उसने देखा उसे हाव हाव करता है, तो बाढ़ तरा तर तरा से बाढ़ छोड़े, फिर कुत्ते का मुख भर दिया, कुत्ते के चोट नहीं लगने दी और मुख में चला जाए, इधर गिर जाए तो नीचे गिर जाए, उधर जाए तो चोट लग जाए, तो मुख भर दिया उसका, जैसे बाथा हो ऐसे बाणों का, इस मुख भरा दौड़ रहा है। अर्जुन ने देख लिया कि भाई ऐसा बाण चलाने वाला कौन है, इतना चतुर जो कि मुख भर दिया, चोट लगने नहीं थी, भागे वैसे ही कुत्ता वैसे ही भागता चला गया, परंतु भौंकना हो गया बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, मुख भर गया सभी। देखा भी कौन है, आगे जा देखा तो भीड़ खड़ा है धनुष बाण हाथ में लिए। उसे पूछा गया तेरा गुरु कौन है, हमारा गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन ने कहा ये द्रोणाचार्य गुरु है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, अब तू ऐसा चतुर है। अर्जुन ने देखा कि इतनी चतुराई तो मेरे में ही नहीं है भाई, और गुरु जी ने वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में तेरे से बड़े कोई नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य ने जाकर महाराज आपका चेला एक लब्ध नाम का भील है, एक लब्ध नाम उसका, वो इतना चतुर है मेरे से भी बड़ा तेज है बाण चलाने में। द्रोणाचार्य कहते मैंने भील को सिखाया ही नहीं, मेरा चेला किया ही नहीं, बुलाओ उसको। उसको बुलाया, कहे तू चेला किसका, मैं आपका हूँ। अरे मैंने सिखाया ना कैसे, आपको याद होगा सब जब ये कौरव पांडव सीखते थे तो मैं भी आया कि महाराज मेरे को सिखाओ। तुम कह रहे हम नहीं सिखाते, तुम अशोक है तेरे को सिखाते नहीं, हम सिखाते ही नहीं। परशुराम जी तो ब्राह्मण को ही सिखाते, द्रोणाचार्य ब्राह्मण और क्षत्रिय को सिखाते थे, निष्पण को हम नहीं सिखाते, तेरा नहीं बनाते। ने कहा कि चेला आप नहीं बनाते, चेला बनाना गुरु का काम नहीं है, गुरु बना चेला का काम है। वो चेला गुरु मान लेता तो आप क्या करोगे, मैंने तो आपको बना दिया गुरु जी, अब बनाऊ क्या। उसने जाए जंगल में द्रोणाचार्य महाराज की मिट्टी की मूर्ति बनाई और धनुष बाण आकर रख दिया। अब कैसे चलो ऐसे, आप ही तो पूछे, आप ही उत्तर देवे। द्रोणाचार्य मुख सामने देखे, वो देख बाण चला, इस बात से गुरु तो आप ही है, आपकी मूर्ति से मैं सीखा हूं, तो मेरे सीखा था तो गुरु दक्षिणा दी ही नहीं तेने, गुरु दक्षिणा नहीं दी महाराज आपको, तो कलाकार दे सकता हूँ गुरु दक्षिणा, आपसे सब कुछ लिया आपको गुरु दक्षिणा जो कहो दे दो, कहते अंगूठा काट रही है हाजिर आपको, क्योंकि ये जो चमत्कार है वो अंगूठे में ही है, बाण कैसे चलाना वो अंगूठे में चमत्कार है। अब अंगूठा कट गया, अब बाण वैसा नहीं चलाते, चला ही नहीं सकते वैसा, तो काट कर चढ़ दे दिया भेंट में। तो महाराज एक लब्ध की तो होगी विजय, वो तो चेला बन गया असली, और गुरु महाराज की बेइज्जती हो गई। अगर आप चेला नहीं मानते तो गुरु दक्षिणा लेने का वो क्या अधिकार, और गुरु दक्षिणा ले ली तो चेला स्वीकार कर ही लिया। उस एक लब्ध के वंश के भील अभी तक है, दांता स्टेट में है, वहां कोई भील रहते हैं, शालिग्राम जी कवि थे वो वहां रहे हैं, वो कहते थे अभी तक ये बाण ऐसे चलाते है, ऐसे अंगूठा नहीं लगाते, वो बाण चलाने बाण रखते हैं, ये लड़ते हैं, बड़ा अंगूठा अंगूठा तो गुरु महाराज को दिया हुआ है, ये तो महाराज को भेज दे दिया, इस बार में कैसे लगा हुआ है। उनके वंशज भी अभी ऐसे बाण चलाते ही हुई, ऐसा एक लब्ध हुआ। तो वो अर्जुन से तेज हो जाए, क्योंकि ये तो वरदान दे दिया अर्जुन को, तेज न हो जाए तो अंगूठा काट दिया। ऐसे महाराज हुए, अर्जुन था उस पर बड़ी कृपा थी, अश्वत्थामा में से भी ज्यादा। महाराज सामने देखते हैं तो दादाजी थे भीष्मादि दादा, और भीष्म के जो चाचा लगते थे वाल्मीकि, वो पर्दा था वाल्मीकि भी थे, पितामह भीष्म थे और जो अपने भीष्म जी के समान अवस्था वाले वे क्षत्रिय थे, वो दादा के समान उनके बेटा थे, वो ही लड़ते थे, उनके पोता अर्जुन दुर्योधन आदि ये भी लड़ते थे और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो भी लड़ता था, इसे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि वे भी लड़ते थे, पांच पीढ़ियां लड़ती थी, बूढ़े बड़े लेकिन छोटे सब महाराज युद्ध हो रहा था। तो वहां धनी में देख करके अर्जुन ने देखा तत्र अपश्य सितान पार्श पार्श तत्र अपश्यत पार्थ वादेव ने कहा प्रथा पुत्र कुंती पुत्र अर्जुन वो देख लेगा, क्योंकि पितृहीन पिताओं को देखता है, पिता महान कई दादा लोग लगते है, आचार्य गुणाचार्य कृपाचार्य आदि, मातुलान मामा है, अपने मामा है, अर्जुन सिंह के मामा है, अर्जुन के मामा हो शल्य आदि के से मामा को देगा, पुत्रान पौत्रान सखी पुत्रों को देगा, पुत्र अभिमन्यु आदि, और पोतों के पोतों को भी देखा और सखी तथा जो सखा थे मित्र थे उनको देखा, ससुरान सूर्य जो ससुर भी थे और मित्र भी थे, कई कोई सूर्य भी थे, दोनों सेनाओं अर्जुन ने इधर दोनों सेनाओं को देखा, जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो दोनों सेनाओं को देखने के लिए दृष्टि पसारी तो देखा तार समीक्ष कौन तेज वो कुंते नंदन, उनको देख करके सर्वान बंधु नमस्कार सब के सब भाई बंधु कुटुम्बी, कोई चाचा है कोई ताऊ है कोई चाचा है कोई दादा है कोई परदादा है कोई मित्र है कोई ससुर है कोई साला है कोई संबंधी है कोई मित्र है, भाई वे इकट्ठे तो अपने मित्र से भी इकट्ठे कोई युद्ध में और कौन आता था, तो दोनों सेनाओं को देखा तो कृपया पर्या विष्णु विशिष्ट विषाद करता हूँ, बड़ा दुखी हो गया अर्जुन कि ये जो मरेंगे हम विजय करेंगे तो उधर के मरेंगे तो हमारे कुटुम्बी, इधर के मरें तो ये हमारे कुटुम्बी, अपने कुटुम्ब का ही नाश करना है ये बड़ा पाप की बात है, बहुत अन्याय हो गया, विषाद करता बड़ा दुखी होकर बोला। अर्जुन कहता दृष्ट स्वजनम कृष्ण हे कृष्ण स्वजनम जो समूह समुपस्थित युद्ध की इच्छा को लेकर अपना सजन समुदाय खड़ा है, अपने अपने कुटुम्बी है, इधर मरे तो हमारे कुटुम्बी उधर मरे तो हमारे कुटुम्बी है तो हमारी, ये मरते हैं इस वास्ते मरा दुख हो रहा है, सीदंती भगवान प्राणी मेरे सब के सब अंग ढीले हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, वे पशु शरीर शरीर में मां कब कभी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांधी सुनते अस्ताद गांधी धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, और तख से ही ऊपर जैसे त्वचा जल रही है, न तो सगुन में अवस्था तुम मैं खड़ा रहने कोई समर्थ नहीं हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मूर्छा आ जाएगी जैसे भीतर में भंवर आ रही है, अब क्या करूँ मैं, ऐसे मौके में इनको मारने के लिए युद्ध करना ये कैसे होगा महाराज, इधर सबके हमारे कुटुम्बी है, नित्यांत वैश्यामी पीड़ितान केशव केशव मैं शकुन देखता हूँ, भावी शकुन क्या होने वाला है ऐसा मैं देखता हूँ, तो विपरीत देखता हूँ उसका भयंकर फल होगा, न तो श्रेवन परिश्यामी हत्वाचन महावी युद्ध में अपने कुटुम्बियों को मार करके मैं कल्याण नहीं देखता हूँ, युद्ध में मारू तो कुटुम्बियों को ही मारता है मारना है, न काम से विजय कृष्ण कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता बाबा विजय चाहे मैं विजय नहीं चाहता, न काम से विजय कृष्ण न से राज्य मैं राज्य नहीं चाहता और सुख भी नहीं चाहता, क्यों राज्य घूम गए क्यों भोगे जीवित हुआ महाराज क्या होगा भोगों से, क्या होगा धन से, क्या होगा राज्य से, क्या होगा विजय से, ये सामर्थ्य एकांश संग रोजा राज्य भोग के लिए जिन कुटुंबियों के लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वे सब के सब भोग और सुखों को छोड़ करके सामने खड़े हैं। भोग और सुखों को नहीं, प्राणास्तवा धनानी सब धन की आशा छोड़कर, प्राणों के जीवन की भी आशा नहीं रख करके सब के सब मरने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर जो कुटुंबियों को मारने से बड़ा पाप होगा, मैं नहीं चाह। कौन है का आचार्य पितर पुत्र ससेज पितामा, हमारा आचार्य है, पिता लोग है, पुत्र है, ऐसे दादा लोग है, मामा है, ससुर है, हमारे पोता है, हमारा स्यादा है, संबंधी में से ये तो सब के सब हमारे संबंधी संबंधी, दोनों सेनाओं में हमारे कुटुंबी कुटुंबी है, इनको कैसे मारूं मैं? कहता ना हम तुम सामी ज्ञातो, ये सब मर करके मेरे को मारे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। बराबर अभी तेलों की राजस्व इनके मारने त्रिलों की राज्य मिल जाए तो मेरे क्या काम का, जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूँ वे कुटुम्बी सुख पावे, आराम से रहे, किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, उनके लिए सब काम कर रहा है, और उनकी हत्या करके सबका नाश कर देना है, फिर किसको दिखाएंगे विजय, किसको कहेंगे देखो हम जीत कर इतने आए हैं, सब कुटुम्बी मर जाएंगे। क्यों वही करते पृथ्वी के लिए क्या, इन कुटुंबों को मारू मैं? ना का भगवान इन सब के स्वजनों कुटुंबियों को धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने से क्या प्रसन्नता होगी? पाप मेरा से दसमान से ये आदत आई है, परंतु इनके मारने से हमारे को पाप ही पाप लगेगा और फायदा क्या होगा? स्वर्ग का राज मिले तो भी नहीं मारना चाहते, किन वही करते जमीन के लिए इन कुटुंबियों को मारू मैं नहीं रह सका। तस्मान नारा भयंग हंतुम धात्राचार्य स्वभान भगवान सदरंग कसंगत्वा सुखी मारे, अपने कुटुंबियों को मार करके हे माधव लक्ष्मी जी भगवान हमारी क्या प्रसन्नता होगी, क्या सुखी हो जाएंगे? सुखी सदन कसंगत्वा सुखी श्याम इनको मार के सुखी कैसे होंगे? कुटुंबियों के तो मर जाने पर भी कुटुंबी बचे हुए रोते हैं, अब इनको मार करके हम सुखी हो जाएंगे? इनका वियोग होने से दुख होगा मरने पर भी, अब इनको मार करके सुखी हो जाए, आप भी जरा सोचो। तो अर्जुन विचार करता है कि मैं कहता हूँ अपने कुटुंबियों को मारना मैं नहीं चाहता, तो दुर्योधन आदि ये भी तो सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, क्या इनके कुटुंबी नहीं है, इनके संबंधी नहीं है क्या दोनों? ये तो बरोबरी संबंधी, ये तो पांडु का पुत्र है, वो धृतराष्ट्र का पुत्र है, ये की दादा पोता है, ये तो ये तो नहीं विचार करते, तू क्यों विचार करता है ऐसा? तो कहते यद्य पियते न पश्यन्ति लोभोपाशेषः, इनके तो हृदय में लोभ सवार हो गया है, उस लोभ के कारण से इनका चेत नहीं रहा है, बेचे तो बेहोश हो गए, पता नहीं विचार नहीं रहा, इनकी विवेक शक्ति नहीं रही, और वे देखते नहीं कुलक्षोष मित्र दोष पातक कुलक्ष का दोष और मित्रों के साथ बैर करने का पातक उसको ये देखते नहीं है, इनकी बुद्धि तो लोग पर छा गई, मैं हम लोग भी छोड़े ही है, हम तो पाप पुण्य को जानते हैं ना, अधर्म धर्म को जानते हैं, विचार करते हैं, कथम गेम कथम न गेम असमा भी पापा दसमान निवृत्त, तुम इस पाप से निवृत्त होने के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए ना, कथम गेम असमा भी पापा दसमान निवृत्त कुलक्षेत्रम दोषम प्रफेषित भी जनार्दन कुलक्षत दोषम प्रपचित भी, हम ठीक तरह से जानते हैं कुल के नाश से कितना पाप होता है, अपने कुटुंबियों के नाश शास्त्र में आता है, अपने कुटुंबियों का नाश करना वो बड़ा पापी होता है, ऐसा पापी मैं कैसे बनू, मैं पापी बनना नहीं चाहता महाराज। ये तो इनके लोभ सवाल हो गया, काम क्रोध लोभ ये नरकों को दर्जा है, तो ये लोभों पर देता है सब ये सब, इस वास्ते ये नहीं गिनते। पर मैं कैसे निकलू, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं को इनकी तरह लोभ में थोड़ा ही फंसा हुआ हूँ। कुलक से कुल से क्या होगा भाई, कुलक से प्रणिष्ठ कुल धर्मा, कुल के नाश होने कुल का धर्म नाश हो जाएगा। कैसे कुल के नाश से कुल धर्म कैसे नाश होगा, कुल धर्म फिर क्या बचेगा? कैसे कुल के नाश होने से स्त्रियां बचेगी, छोटे छोटे बच्चे बचेंगे तो वे अधर्मी हो जाएंगे। हमारे बड़कों ने युद्ध किया, कुटुंब को मारा दिया, तो कुल धर्म सनातन तो अनाधिकार से कुल धर्म आ रहा है। उसमें उन्होंने विचार किया तो पीछे छोटी पीढ़ी है, माताओं के गोदियों में बहुत से बालक हैं, वे बढ़ेगा तो उनका कुल धर्म नष्ट हो जाएगा।